डैनियल की पुस्तक संख्या 74 भविष्य सूचक पहेली का अनावरण। यहेजकेल की घृणितताएं, अंतिम दिन की कलीसिया और पशु का चिन्ह।
यहेजकेल अध्याय 8 की चार खुनिस बातें। परमेश्वर की अंतिमकालीन लाओदीकियाई कलीसिया के नेतृत्व को सूर्य के आगे नतमस्तक होने तक पहुंचा देती हैं, और इस प्रकार वो पशु का चिन्ह प्राप्त करता है। अगला अध्याय, जो उसी दर्शन का अगला भाग है, परमेश्वर की अंतिमकालीन कलीसिया के उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर की मुहर पाते हैं। सिस्टर वाइट हमें बताती हैं कि यहेजकेल अध्याय 9 की मुहरबंदी वही है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में दर्शाई गई है। परमेश्वर किसी राष्ट्र का न्याय उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी पर करता है, और यहेजकेल 8 की चार खुनिस बातें 1833 में आरंभ हुए विद्रोह की चार पीढ़ियों की पहचान कराती हैं। जब लाओदीकियाई एडवेंटवाद ने हबक्कूक की उन दो पट्टिकाओं का एक नकली प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिन्हें परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा संबंध के प्रतीक के रूप में दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन इसराइल की शुरुआत में 10 आज्ञाओं की दो पट्टिकाएं दी गई थीं। हारून का सोने का बछड़ा एक नकली मूर्ति था, विद्रोह का प्रतीक, जो ठीक उसी समय प्रकट हुआ जब परमेश्वर दो पत्थर की पट्टिकाएं तैयार कर रहे थे जो ईर्ष्या की वास्तविक मूर्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। हारून का सोने का बछड़ा उस जाली 1833 चार्ट का प्रतिरूप था जिसने अन्य समय भविष्यवाणियों के साथ संदेश से लैव्य व्यवस्था 26 के 7 समय को हटा दिया था। इस प्रकार लाओदीकियाई एडवेंटवाद ने अपने इतिहास की बिल्कुल शुरुआत में ही ईर्ष्या की एक मूर्ति खड़ी कर दी, जैसा प्राचीन इसराइल के प्रारंभिक इतिहास में हारून ने किया था और जैसा एप्रैम के उत्तरी राज्य के प्रारंभिक इतिहास में यारोबाम ने किया था। लैव्य व्यवस्था 26 का 7 समय वह समय संबंधी पहली भविष्यवाणी थी जिसे समझने के लिए मिलर को मार्गदर्शन मिला, और ये 1863 के विद्रोह में अलग रख दिया गया भविष्य सूचक समय का पहला रत्न भी था। 1863 ने मिलर के स्वप्न के रत्नों को ढंकने की शुरुआत और नकली रत्नों व सिक्कों के प्रवेश को चिह्नित किया। 7 समय वह कोण शिला था जिसे निर्माताओं ने ठुकरा दिया। 1863 में मिलराइट मंदिर के वही निर्माता थे जिन्होंने 7 समय की कोण शिला को अलग रख दिया, परंतु अंतिम दिनों में वही पत्थर अब कोने का प्रधान पत्थर बन गया है। वह पत्थर युगों की चट्टान का प्रतिनिधित्व करता था और उसे उस दिन द्वारा भी दर्शाया गया था जिसे प्रभु ने बनाया था, क्योंकि वो भूमि के लिए सप्त के विश्राम का प्रतीक था। 1844 में मिलराइट एडवेंटवाद ने यारोबाम की मिथ्या उपासना प्रणाली को धिक्कारा और उपहास करने वालों की सभा से अलग हो गया जो पहली निराशा पर आनंदित हुए थे। निर्माताओं को उपहास करने वालों की सभा में कभी न लौटने का निर्देश दिया गया था, जैसे यहूदा के भविष्यद्वक्ता को ये निर्देश दिया गया था कि वो उस मार्ग से भिन्न मार्ग से यरूशलेम लौटे जिसने उसे 1844 तक पहुँचाया था। जो मार्ग उसे 1844 तक पहुंचाया था वही मार्ग वो था जिससे वो बाहर निकला था। वो था प्रोटेस्टेंटवाद, और उस इतिहास में प्रोटेस्टेंटवाद धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद बन चुका था। निर्माताओं को आदेश दिया गया था कि वे उपहास करने वालों की सभा में कभी वापस न जाएं, और उन्हें ये भी निर्देश दिया गया था कि वे उनका भोजन न खाएं और न उनका पानी पिए। निर्माताओं ने 1840 में स्वर्गदूत के हाथ में जो छोटी पुस्तक थी उसे खा लिया था, और वो भोजन उनके मुख में मधुर था। भविष्यवाणी को खाना और पीना बाइबल का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त कार्य प्रणाली का प्रतीक है। मिलराइट्स को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का एक विशिष्ट तरीका दिया गया था, और उन नियमों ने ऐसा बाइबिलीय संदेश उत्पन्न किया जो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के धर्मशास्त्रियों द्वारा उनकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली से तैयार किए गए संदेश से बिल्कुल भिन्न था। वे निर्माता, जो यहूदा के नबी भी थे, को लौटकर धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद या कैथोलिकवाद किसी की भी कार्यप्रणाली का खाना पीना नहीं करना था, परंतु यहूदा के नबी ने वही किया, और इस प्रकार ये चिन्हित हुआ कि लाओदीकीय एडवेंटिज्म 1833 में वही करेगा, क्योंकि 1833 में उन्होंने धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के धर्मशास्त्रीय तर्कों का उपयोग करके 7 बार के मिलर द्वारा किए गए अनुप्रयोग को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार हारून और यरोबाम की ईर्ष्या की मूर्तियां स्थापित कर दी। तब लाओदिकीय एडवेंटिज्म की पहली पीढ़ी आरंभ हो चुकी थी। यहूदा से आए नबी ने यारोबाम से मुलाकात करने के बाद यहूदा लौटने की अपनी यात्रा शुरू की, पर वो कभी वहां पहुंचा नहीं। वो नबी लाओदिकियाई एडवेंटिज्म का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रेरणा के अनुसार 1856 में मिलर राइट आंदोलन में आ पहुंचा। बहन व्हाइट ने एडवेंटिज्म को लाओदिकियाई के रूप में पहचानने से कभी पीछे नहीं हटी और बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि लाओदिकिया कभी बदलती है। कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाओदिकियाई अनुभव से निकल आते हैं, परंतु एक कलीसिया के रूप में लाओदिकिया को प्रभु के मुख से उगल दिया जाना है, क्योंकि लाओदिकिया का अर्थ है न्याय किए गए लोग। एडवेंटिज्म इस परिभाषा का उपयोग ये दावा करने के लिए करता है कि वो उस कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वर्गीय पवित्र स्थान में न्याय के काल के दौरान विद्यमान है। अपनी अंधता में वे लाओदिकिया के अर्थ के जांच पड़ताल वाले न्याय के तत्व को स्वीकार तो करते हैं, पर अपने ही नाम में स्पष्ट रूप से व्यक्त कार्यकारी न्याय को नहीं देख पाते।
और लाओदिकियों की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखो, ये बातें वो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। काश तू या तो ठंडा होता या गर्म। इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि तू कहता है मैं धनी हूं, बहुत कुछ पा लिया है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, और तू नहीं जानता कि तू अभागा दहनीय कंगाल अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3:14-17।
यहूदा का भविष्यद्वक्ता अंततः उस झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ दफनाया जाता है जिसने उसे धोखा देकर अपना भोजन खिलाया और अपना पेय पिलाया। दोनों अंत में एक ही कब्र में दफन होते हैं और बेथेल का झूठा भविष्यद्वक्ता नकली कलीसिया उसके मरने पर उसे भाई कहता है।
अब बेतेल में एक वृद्ध भविष्यद्वक्ता रहता था और उसके पुत्र आए और उसे उन सब कामों का समाचार दिया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थीं वे भी उन्होंने अपने पिता को बताई। तब उनके पिता ने उनसे कहा, वो किस मार्ग गया? क्योंकि उसके पुत्रों ने देखा था कि यहूदा से आया हुआ परमेश्वर का जन किस मार्ग गया था, और उसने अपने पुत्रों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी कसो। तब उन्होंने उसके लिए गधे पर काठी कसी और वो उस पर सवार हुआ, और वो परमेश्वर के जन के पीछे चला और उसे बलूत के पेड़ के नीचे बैठा पाया, और उसने उससे कहा, क्या तू वही परमेश्वर का जन है जो यहूदा से आया है? उसने कहा, मैं हूं। तब उसने उससे कहा, मेरे साथ घर चल और भोजन कर। उसने कहा, मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता ना तेरे साथ भीतर जा सकता। इस स्थान में न तो मैं तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझसे कहा गया है कि तू वहां रोटी न खाना न पानी पीना और न जिस मार्ग से आया है उसी से लौटना। उसने उससे कहा, मैं भी तेरे समान एक भविष्यद्वक्ता हूं, और यहोवा के वचन के द्वारा एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है कि उसे अपने साथ अपने घर लौटा ले जा ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। परंतु उसने उससे झूठ कहा, सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और ऐसा हुआ कि जब वे मेज पर बैठे थे तब यहोवा का वचन उस भविष्यद्वक्ता के पास आया जिसने उसे लौटाया था। तब उसने यहूदा से आए परमेश्वर के जन की ओर पुकार कर कहा, यहोवा यों कहता है, क्योंकि तूने यहोवा के मुख के वचन की अवज्ञा की है और उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी, परंतु तू लौट आया और इस स्थान में रोटी खाई और पानी पिया जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, रोटी न खाना और पानी न पीना। इस कारण तेरी लाश तेरे पितरों की कब्र में नहीं जाएगी। 1 राजा 13:11-22।
1005 आगमियों में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश इस बात की पहचान कराने में निहित था कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं पतित हो चुकी थीं और कैथोलिक धर्म की पुत्रियां बन गई थीं। मिलरवादी एडवेंटवाद ने स्त्री पुरुषों को उन संप्रदायों से बाहर निकल आने के लिए बुलाया था क्योंकि उनमें बने रहना आत्मिक और शाश्वत मृत्यु के समान था। बेतल का झूठा भविष्यवक्ता बेतल में यारोबाम द्वारा स्थापित धार्मिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसने पशु की मूर्ति स्थापित की और जिसकी नकल की गई वो पशु कैथोलिक धर्म का पशु है। प्रोटेस्टेंट अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहलाते रहे, पर वे सूर्य के दिन को उपासना के दिन के रूप में मानते भी रहे, जो कैथोलिक धर्म के अधिकार का चिन्ह है। प्रोटेस्टेंट ये दावा करते हैं कि वे प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट की एकमात्र परिभाषा रोम का विरोध करना है, और ऐसा करते हुए उनका अंगीकार रोमन कलीसिया का प्रतिबिंब बन जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मसीही संस्था होने का दावा करती है, यद्यपि उसके इस दावे के लिए कोई बाइबली औचित्य नहीं है। उसका दावा परंपरा और रीति रिवाजों के खोखले प्राधिकार पर आधारित है, और यही वही झूठा प्राधिकार है जिसका सहारा प्रोटेस्टेंटवाद भी लेता है जब वो अपने को प्रोटेस्टेंट होने का दावा करता है। यही वही तर्क है जिसने सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों को ये मानने में अंधा कर दिया कि लाओदीकियाई होने के नाते वे अब भी एक सुरक्षित वाचा संबंध में हैं। यही वही झूठा प्राधिकार है जिसे प्राचीन इसराइल ने तब घोषित किया जब उन्होंने कहा, यहोवा का मंदिर हम हैं।
ये चेतावनी यहूदी लोगों ने नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया और उसके प्रतिनिधि होने के अपने उच्च विशेषाधिकार की समझ खो दी। उन्हें मिली आशीषें संसार के लिए किसी आशीष का कारण नहीं बनी। अपने सभी लाभ उन्होंने अपने ही महिमामंडन में लगा दिए। उन्होंने परमेश्वर को उस सेवा से वंचित किया जिसकी वो उनसे अपेक्षा करता था, और अपने सहमनुष्यों को धार्मिक मार्गदर्शन तथा पवित्र आदर्श से वंचित कर दिया। प्रलय पूर्व संसार के निवासियों की तरह वे अपने दुष्ट हृदय की हर कल्पना के पीछे चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने पवित्र बातों को एक तमाशा बना दिया, कहते हुए, प्रभु का मंदिर यही है, यरमयाह 7:4। और उसी समय वे परमेश्वर के चरित्र का गलत चित्र प्रस्तुत कर रहे थे, उसके नाम का अनादर कर रहे थे और उसके पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे थे। प्रभु की दाखपारी की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए किसान अपनी जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। याजक और शिक्षक लोगों के विश्वसनीय उपदेशक नहीं थे। वे लोगों के सामने परमेश्वर की भलाई और दया और उनके प्रेम तथा सेवा पर उनके अधिकार को नहीं रखते थे। ये किसान अपनी ही महिमा चाहते थे। वे दाखपारी के फलों को अपने लिए हड़प लेना चाहते थे। उनका प्रयत्न यही था कि वे ध्यान और आदर अपनी ओर आकर्षित करें। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 92।
1863 में मिलरवादियों का आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु 1865 में ही वो फिलाडेल्फियाइयों का आंदोलन रेना बंद हो गया था। मूसा के संदेश 7 बार को, जिसे एलिया विलियम मिलर ने प्रस्तुत किया था, अस्वीकार कर दिया गया, और ये अस्वीकार करना बेथेल के झूठे नबी की पद्धति पर आधारित था। 1793-1798 में शुरू हुए 65 वर्षों का अंत था, और यशायाह के 7वें अध्याय की भविष्यवाणी का अंत था।
और ऐसा हुआ कि योताम के पुत्र उज्जिया के पुत्र यहूदा के राजा अहाज के दिनों में कि सीरिया के राजा रिजीन और इज़राइल के राजा रेमलिया के पुत्र पेका यरूशलेम पर चढ़ाए कि उसके विरुद्ध लड़ें, पर वे उस पर प्रबल न हो सके। और दाऊद के घराने को बताया गया ये कहकर कि सीरिया एप्रैम के साथ मिल गया है, तब उसका और उसके लोगों का हृदय ऐसे कांप उठा जैसे वन के वृक्ष हवा से हिलते हैं। तब यहुवा ने यशाया से कहा, अब तू और तेरा पुत्र शेया राशूब धोबी के खेत के राजमार्ग में ऊपरी कुंड के नाले के सिरे पर अहाज से मिलने जाओ, और उससे कहना, सावधान रहो और शांत रहो, मत डरो और ना ही आभारो, इन धुआं छोड़ते जलते कुंदों की 2 पूंछों से, सीरिया सहित रिजीन के प्रचंड क्रोध से और रेमलिया के पुत्र के क्रोध से, क्योंकि सीरिया एप्रैम और रेमलिया के पुत्र ने तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति बांधी है। ये कहकर, आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे परेशान करें और उसमें अपने लिए सेंध लगाएं और उसके बीच में एक राजा बैठाएं, अर्थात तबेल के पुत्र को। प्रभु यहोवा यों कहता है, ये न ठहरेगा और न घटित होगा, क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रिजीन है, और 65 वर्षों के भीतर एप्रालिम ऐसा टूट जाएगा कि वो कोई जाति नहींगा, और एप्राम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रेमल्या का पुत्र है। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय स्थिर न रहोगे। यशाया 7:1-5।
आठवें पद की 65 वर्षीय भविष्यवाणी ये बताती है कि के भीतर 65 वर्षों की अवधि में 10 गोत्रों का उत्तरी राज्य बंधुआई में ले जाया जाएगा। ये दर्शन 745 ईपीयू में दर्ज किया गया था और 19 वर्ष बाद 733 ईपीयू में इफ्रैम छित्रा दिया गया और असीरियो द्वारा बंधुआई में ले जाया गया। 77 ईपीयू में 65 वर्षों के अंत में राजा मनश्शे को पकड़कर बाबुल ले जाया गया। 74 ईपीयू का आरंभ दिन इज़राइल के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच एक गृह युद्ध को चिह्नित करता है, जैसे 1863 संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच हुए गृह युद्ध के ठीक केंद्र को चिह्नित करता है। ये भविष्यवाणी शाब्दिक महिमामय देश यहूदा में यशाया द्वारा घोषित की गई थी, और 1863 की भविष्यवाणी आध्यात्मिक महिमामय देश संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी हुई। 65 वर्षीय भविष्यवाणी के भीतर 3 मील बाहर के पत्थर है। 745 ईसा पूर्व का गृह युद्ध हुआ, उसके 19 वर्ष बाद 735 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य तितर बितर कर दिया गया। 65 वर्षों के अंत में दक्षिणी राज्य तितर बितर कर दिया गया। ये भविष्यवाणी अपने प्रारंभ और अंत सहित उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध ईश्वर के दोनों कोपों को निरूपित करती है, और इन दोनों कोपों के आरंभ से पहले 19-19 वर्ष का अंतराल है, तथा उनकी पूर्ति के पश्चात भी 19-19 वर्ष का एक और अंतराल आता है। पूरी चियास्टिक संरचना उत्तर और दक्षिण के बीच उस गृहयुद्ध काल की पहचान करती है जो शुरुआत और समाप्ति को चिह्नित करता है। शुरुआत और अंत के बीच गृहयुद्ध के जूझने बुनो प्रतिद्वंद्वी दास्ता में ले जाए गए, और जिन 65 वर्षों में उन्हें दास्ता की अपनी परस्पर बिखरी हुई अवस्था से निकालकर एक राष्ट्र में एकत्र किया जाता है, वे 1863 तक पहुँचते हैं, जो दासों को मुक्त करने वाली दास मुक्ति उद्घोषणा की तिथि है। शाब्दिक यहूदा में एक गृहयुद्ध की भविष्यवाणी आध्यात्मिक यहूदा में गृहयुद्ध पर समाप्त होती है, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के साथ दिखाते हैं, क्योंकि वे अल्फा और ओमेगा है। 157 का इतिहास 785 के इतिहास द्वारा दर्शाया गया था, जब भविष्यवक्ता यशाया ने अपने पुत्र के साथ मिलकर यहूदा के दुष्ट राजा आहाज को एक संदेश दिया। उस पाठ्यांश में 57 के ईसा पूर्व को राजा आहाज की गवाही द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो यहूदा का राजा था और जिसने परमेश्वर के पवित्र स्थान की सेवा बंद कर दी थी, तथा अपने महायाजक से परमेश्वर के पृथ्वी पर स्थित पवित्र स्थान के ठीक उसी परिसर में एक सीरियाई मंदिर का प्रतिरूप स्थापित करवाया था। दुष्ट राजा आहाज के इतिहास में यशाया की भविष्यवाणी द्वारा 750-7 ईसा पूर्व के रूप में चिह्नित यरूशलेम के नेता ने परमेश्वर की कलीसिया में मूर्ति पूजा कैथोलिकवाद की उपासना का प्रवेश कराया, जैसे लाओदिकियाई एडवेंटवाद एलिया द्वारा दिए गए मूसा के संदेश को त्यागने के लिए धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की पद्धति की ओर लौट गया। 750-7 ईसा पूर्व में यशायाह ने ऊपरी तालाब की नाली के छोर पर धोबी के खेत के पास यहूदा के दुष्ट राजा का सामना किया, और जब वो ऐसा करने गया तो अपना पुत्र भी साथ ले गया। उसके पुत्र का नाम एक चिन्ह था, और जब यहूदा से आया नबी राजा यारोबाम का सामना करने आया तब उसने भी उसे एक चिन्ह दिया।
देखो, मैं और वे बच्चे जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं इसराइल में चिन्हों और चमत्कारों के लिए हैं, यहोवा सेनाओं की ओर से जो सियोन पर्वत पर वास करता है। यशाया 8:18।
यशायाह के पुत्र शेआर याशूब के नाम का अर्थ है अवशेष लौट आएगा। जो लौटते हैं, जो अवशेष बनते हैं, वे वही हैं जो विलंब के समय प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं।
और मैं यहोवा की बाट जोहूंगा, जो याकूब के घराने से अपना मुख छिपाता है, और मैं उसे ढूंढूंगा। देखो, मैं और वे बालक जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं इसराइल में सेनाओं के यहोवा की ओर से चिन्ह और चमत्कारों के लिए है, जो सियोन पर्वत पर वास करता है। यशाया 8:17-18।
जब यशाया 700 यौंतों पीरदे के नाम पर दुष्ट राजा आहाज से भेंट करता है, तो वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने प्रतीक्षा की है, क्योंकि सभी भविष्यवक्ता अंतिम दिनों के बारे में बोल रहे हैं, और जो लोग अंतिम दिनों में प्रतीक्षा करते हैं वे हैं जिन्होंने पहली निराशा का अनुभव किया है। यिर्मयाह ने सोचा कि परमेश्वर ने धोखा दिया है और वर्षा रोक रखी है, और यशाया मानता है कि परमेश्वर ने याकूब के घराने से अपना मुख छिपा लिया है। परंतु यशाया निश्चय करता है कि वो प्रतीक्षा करेगा और प्रभु की बाँट जोहेगा। ये दर्शन के विलंब के समय में बुद्धिमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो लौट आए और बहुमूल्य को निकृष्ट से अलग किया, जो परमेश्वर के मुखपत्र बनने वाले थे उन पर मुहर लगाई गई, और इस प्रकार वे उन लोगों के विपरीत ठहराए गए जो पशु का चिन्ह ग्रहण करते हैं।
और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और टूटेंगे और फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। गवाही को बांध और मेरी व्यवस्था को मेरे शिष्यों के बीच मुहर बंद कर, और मैं यहोवा की बाट जोहूंगा जो याकूब के घराने से अपना मुख छिपाता है, और मैं उसकी खोज करूंगा। देखो, मैं और वे बच्चे जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं इसराइल में सेनाओं के यहोवा की ओर से चिन्ह और अद्भुत कर्मों के लिए है, जो सियोन पर्वत पर वास करता है। और जब वे तुमसे कहें, ओझाओं से और उन जादूगरों से पूछो जो कुहुकते और बड़बड़ाते हैं, तो क्या लोगों को अपने परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मरे हुओं से पूछा जाए? व्यवस्था और गवाही की ओर, यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो इसका कारण ये है कि उनमें प्रकाश नहीं है। यशाया 8:16-23।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
ये सिस्टर वाइट के शब्द नहीं बल्कि प्रभु के शब्द हैं, और उसके दूत ने उन्हें मुझे आपको देने के लिए दिए हैं। परमेश्वर आपसे आह्वान करता है कि आप अब उसके उद्देश्यों के विरुद्ध काम न करें। उन लोगों के विषय में बहुत सा निर्देश दिया गया जो अपने को मसीही कहते हैं, जबकि वे शैतान के गुण प्रकट कर रहे होते हैं और भाव, वचन तथा कर्म से सत्य की उन्नति का विरोध करते हुए निश्चय ही उसी मार्ग पर चल रहे हैं जहां शैतान उन्हें ले जा रहा है। अपने हृदय की कठोरता में उन्होंने ऐसा अधिकार हथिया लिया है जो किसी भी प्रकार से उनका नहीं है और जिसका उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। महान शिक्षक कहते हैं, मैं उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा। बै टटल क्रीक में लोग कहते हैं, हम प्रभु का मंदिर हैं, प्रभु का मंदिर हैं, पर वे साधारण आग का उपयोग कर रहे हैं। उनके हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से न तो नरम हुए हैं और न ही वश में आए हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेज खंड 13-22-200।